पृष्ठ संख्या 19 धारा 93 सद्भाव पूर्वक दी गई संसूचना। सद्भाव पूर्वक दी गई संसूचना उस अपहान के कारण अपराध नहीं है जो उस व्यक्ति को हो जिसे वह दी गई है। यदि वह उस व्यक्ति के फायदे के लिए दी गई हो। दृष्टांत क एक शल्य चिकित्सक एक रोगी को सद्भाव पूर्वक यह संसूचित करता है कि उसकी राय में वह जीवित नहीं रह सकता। इस आघात के परिणाम स्वरूप उस रोगी की मृत्यु हो जाती है। क ने कोई अपराध नहीं किया है यद्यपि वह जानता था कि उस संसूचना से उस रोगी की मृत्यु कारित होना संभाव्य है। धारा 94 वह कार्य जिसको करने के लिए कोई व्यक्ति धमकियों द्वारा विवश किया गया है। हत्या और मृत्यु से दंडनीय उन अपराधों को जो राज्य के विरुद्ध है छोड़कर कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए जो उसे करने के लिए ऐसी धमकियों से विवश किया गया हो जिनसे उस बात को करते समय उसको युक्तियुक्त रूप से यह आशंका कारित हो गई हो कि अन्यथा परिणाम यह होगा कि उस व्यक्ति की तत्काल मृत्यु हो जाए। परंतु यह तब जबकि उस कार्य को करने वाले व्यक्ति ने अपनी ही इच्छा से या तत्काल मृत्यु से कम अपनी अपहान की युक्त आशंका से अपने को उस स्थिति में न डाला हो जिसमें कि वह ऐसी मजबूरी के अधीन पड़ गया है। स्पष्टीकरण पहला, वह व्यक्ति जो स्वयं अपनी इच्छा से या पीटे जाने की धमकी के कारण डाकुओं की टोली में उनके सील को जानते हुए सम्मिलित हो जाता है, इस आधार पर ही इस अपवाद का फायदा उठाने का हकदार नहीं है कि वह अपने साथियों द्वारा ऐसी बात करने के लिए विवश किया गया था जो विधिना अपराध है। स्पष्टीकरण दूसरा, डाकुओं की एक टोली द्वारा अभिगृहित और तत्काल मृत्यु की धमकी द्वारा किसी बात के करने के लिए जो विधिना अपराध है विवश किया गया व्यक्ति, उदाहरणार्थ एक लोहार जो अपने औजार लेकर एक गृह का द्वार तोड़ने को विवश किया जाता है जिससे डाकू उसमें प्रवेश कर सके और उसे लूट सके, इस अपवाद का फायदा उठाने के लिए हकदार है। धारा 95 तुच्छ अपहान कारित करने वाला कार्य। कोई बात इस कारण से अपराध नहीं है कि उससे कोई अपहान कारित होती है या कारित की जानी आशयित है या कारित होने की संभाव्यता ज्ञात है। यदि वह इतनी तुच्छ है कि मामूली समझ और स्वभाव वाला कोई व्यक्ति उसकी शिकायत न करेगा। अब प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के विषय में धारा 96 प्राइवेट प्रतिरक्षा में की गई बातें। कोई बात अपराध नहीं है जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में की जाती है। टिप्पणियां क्षेत्र व्यक्तिगत प्रतिरक्षा के अधिकार को साबित करने के लिए अभियुक्त को इस संबंध में साक्ष्य पेश करना चाहिए जैसे रंजिथम बनाम बासव राज्य। AIR 2012, SC 1856, 2012 CRL J 2135, 2012 1 SCC 414, 2012 1 SCC 3454। युक्त युक्त आशंका। व्यक्तिगत प्रतिरक्षा के अधिकार का दावा करने के लिए मृत्यु आधार उपहित की युक्त युक्त आशंका साबित की जानी चाहिए। अर्जुन बनाम महाराष्ट्र राज्य, AIR 2012, SC 2181, 2012 CRLJ 264, 2012 5 SCC 530, 2012 3 SCC 224, 2012 114 AIC 83। अभिभावक आवश्यक नहीं। अभिभावक आवश्यक नहीं। व्यक्तिगत प्रतिरक्षा के अधिकार का अभिभावक सदैव अभियुक्त द्वारा नहीं किया जाना है। बी सुब्रमणी एवं अन्य बनाम स्टेट ऑफ तमिलनाडु 2005 क्री लॉ ज 1787। धारा 97। शरीर तथा संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार। धारा 99 में अंतर्विष्ट निर्बंधनों के अध्यधीन हर व्यक्ति को अधिकार है कि वह पहला मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले किसी अपराध के विरुद्ध अपने शरीर और किसी अन्य व्यक्ति के शरीर की प्रतिरक्षा करे। दूसरा किसी ऐसे कार्य के विरुद्ध जो चोरी लूट रिष्टि या आपराधिक अतिचार की परिभाषा में आने वाला अपराध है या जो चोरी लूट रिष्टि या आपराधिक अतिचार करने का प्रयत्न है अपनी या किसी अन्य व्यक्ति की चाहे जंगम चाहे अस्थावर संपत्ति की प्रतिरक्षा करे। टिप्पणियां। उठाने का हकदार नहीं। अभियुक्त पर उपहित की उपस्थिति यह उपधारणा उत्पन्न नहीं करती कि अभियुक्त आत्म प्रतिरक्षा का अभिभावक उठाने का हकदार है। बी सुब्रमणी एवं अन्य बनाम स्टेट ऑफ तमिलनाडु 2005 क्री लॉ 1727। पृष्ठ संख्या 20। धारा 98। ऐसे व्यक्ति के कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जो विकृत चित्त आदि हो, जबकि कोई कार्य जो अन्यथा कोई अपराध होता उस कार्य को करने वाले व्यक्ति के बालकपन समझ की परिपक्वता के अभाव चित्त विकृति या मत्तता के कारण या उस व्यक्ति के किसी भ्रम के कारण वह अपराध नहीं है, तब हर व्यक्ति उस कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का वही अधिकार रखता है जो वह उस कार्य के वैसा अपराध होने की दशा में रखता। दृष्टांत। बिंदु क है, यह पागलपन के असर में क को जान से मारने का प्रयत्न करता है। यह किसी अपराध का दोषी नहीं है, किंतु क को प्राइवेट प्रतिरक्षा का वही अधिकार है जो वह यह के स्वस्थ चित्त होने की दशा में रखता। बिंदु ख है, क रात्रि में एक ऐसे गृह में प्रवेश करता है जिसमें प्रवेश करने के लिए वह वैध रूप से हकदार है। यह सद्भाव पूर्वक क को गृह भेदक समझकर क पर आक्रमण करता है। यहाँ यह इस भ्रम के अधीन क पर आक्रमण करके कोई अपराध नहीं करता है, किंतु क य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का वही अधिकार रखता है जो वह तब रखता जब यह उस भ्रम के अधीन कार्य न करता। धारा 99, कार्य जिनके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है। यदि कोई कार्य जिससे मृत्यु या घोर उपहित की आशंका युक्ति युक्त रूप से कारित नहीं होती, सद्भाव पूर्वक अपने पदाभास में कार्य करते हुए लोक सेवक द्वारा किया जाता है या किए जाने का प्रयत्न किया जाता है, तो उस कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है, चाहे वह कार्य विधि अनुसार सर्वथा न्यायानुमत न भी हो। यदि कोई कार्य जिससे मृत्यु या घोर उपहित की आशंका युक्तियुक्त रूप से कारित नहीं होती, सद्भाव पूर्वक अपने पदाभास में कार्य करते हुए लोक सेवक के निर्देश से किया जाता है या किए जाने का प्रयत्न किया जाता है, तो उस कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है, चाहे वह निदेश विधि अनुसार सर्वथा न्यायानुमत न भी हो। उन दशाओं में जिनमें संरक्षा के लिए लोक प्राधिकारियों की सहायता प्राप्त करने के लिए समय है, प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है। इस अधिकार के प्रयोग का विस्तार। किसी दशा में भी प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार उतनी ही अपहान से अधिक अपहान करने पर नहीं है जितनी प्रतिरक्षा के प्रयोजन से करनी आवश्यक है। स्पष्टीकरण पहला है, कोई व्यक्ति किसी लोक सेवक द्वारा ऐसे लोक सेवक के नाते किए गए या किए जाने के लिए प्रयतीत कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार से वंचित नहीं होता, जब तक कि वह यह न जानता हो या विश्वास करने का कारण न रखता हो कि उस कार्य को करने वाला व्यक्ति ऐसा लोक सेवक है। स्पष्टीकरण दूसरा, कोई व्यक्ति किसी लोक सेवक के निर्देश से किए गए या किए जाने के लिए प्रयतीत किसी कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार से वंचित नहीं होता, जब तक कि वह यह न जानता हो या विश्वास करने का कारण न रखता हो कि उस कार्य को करने वाला व्यक्ति ऐसे निर्देश से कार्य कर रहा है, या जब तक कि वह व्यक्ति उस प्राधिकार का कथन न कर दे जिसके अधीन वह कार्य कर रहा है, या यदि उसके पास लिखित प्राधिकार है जो जब तक कि वह ऐसे प्राधिकार को मांगे जाने पर पेश न कर दे। टिप्पणियां, विधि यह नहीं कहती कि वह व्यक्ति जिसकी संपत्ति पर अतिचारियों द्वारा बलपूर्वक कब्जा करने का प्रयत्न किया जाए वहां से भागकर प्राधिकारियों से सुरक्षा मांगने जाए। प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार एक सामाजिक उद्देश्य को पूरा करता है। मुंशी राम बनाम दिल्ली प्रशासन, AIR 1968 SC 702। प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग के समय विधि यह आशा नहीं करती कि प्रतिरक्षक आक्रमण को समाप्त करने के लिए बल की सही मात्रा कितनी होगी को तराजू पर तौलेगा। इस अधिकार के प्रयोग में बल के मात्रा की सटीकता को नहीं बल्कि उसकी युक्तियुक्तता को देखा जाना चाहिए। बूटा सिंह बनाम राज्य AIR 1991 SC 1316। धारा 100। शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्युकारित करने पर कब होता है? शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार पूर्ववर्ती अंतिम धारा में वर्णित निर्बंधनों के अधीन रहते हुए हमलावर की स्वेच्छा मृत्युकारित करने या कोई अन्य अपहान कारित करने तक है। यदि वह अपराध जिसके कारण उस अधिकार के प्रयोग का अवसर आता है एत अस्मिन पश्चात प्रगणित भांतियों में से किसी भी भांत का है, अर्थात पृष्ठ संख्या 21, इसमें पहला है, ऐसा हमला जिससे युक्त रूप से यह आशंका कारित हो कि अन्यथा ऐसे हमले का परिणाम मृत्यु होगा। दूसरा, ऐसा हमला जिससे युक्तियुक्त रूप से यह आशंका कारित हो कि अन्यथा ऐसे हमले का परिणाम घोर उपहित होगा। तीसरा, प्लात्संग करने के आशय से किया गया हमला। चौथा, प्रकृति विरुद्ध काम तृष्णा की तृप्ति के आशय से किया गया हमला। पांचवा, व्यपहरण या अपहरण करने के आशय से किया गया हमला। छठा है, इस आशय से किया गया हमला की किसी व्यक्ति का ऐसे परिस्थितियों में सदोष परिरोध किया जाए जिनसे उसे युक्ति युक्त रूप से यह आशंका कारित हो कि वह अपने को छुड़वाने के लिए लोक प्राधिकारियों की सहायता प्राप्त नहीं कर सकेगा। सातवां है, तेजाब फेंकने या सेवन कराने का कार्य या तेजाब फेंकने या सेवन कराने का प्रयत्न जो युक्ति युक्त रूप से यह आशंका उत्पन्न कर सकेगा कि घोर उपहित अन्यथा ऐसे कार्य का परिणाम होगी। टिप्पणियां, बातचीत के शब्दों का आदान प्रदान कितना ही गर्मा गर्म क्यों न हो उससे मृत्यु की आशंका कभी नहीं होती और वहां धारा 100 का कोई भी खंड लागू नहीं होता। जयप्रकाश बनाम दिल्ली प्रशासन 1991 2 SCC 32। प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार न केवल उस व्यक्ति के विरुद्ध प्राप्त है जो वास्तव में वार करता है बल्कि उस विधि विरुद्ध जमाव के सभी सदस्यों के विरुद्ध है जो विधि विरुद्ध जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में लगे हैं। गुलजार सिंह बनाम राज्य 1971 क्रीलॉज SC 498। केवल इस संदेह के आधार पर प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के लिए कोई क्षेत्र नहीं है कि मृतक घटना स्थल पर हथियार के साथ पहुंचा था। चाको एंड आदर्श बनाम स्टेट ऑफ केरल 2000 41 SCC 675, धारा 101, कब ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न कोई अपहान कारित करने तक का होता है? यदि अपराध पूर्वगामी अंतिम धारा में प्रगणित भांतियों में से किसी भांति का नहीं है तो शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार हमलावर की मृत्यु स्वेच्छा कारित करने तक का नहीं होता, किंतु इस अधिकार का विस्तार धारा 99 में वर्णित निर्बंधनों के अध्यधीन हमलावर की मृत्यु से भिन्न कोई अपहान स्वेच्छा कारित करने तक का होता है। टिप्पणियां। आत्मरक्षण। अभियुक्त को न तो कोई रक्त स्राव की न ही प्रत्यक्ष उपहित हुई और न तो उपहतियों की प्रकृति को साबित करने के लिए किसी चिकित्सक की परीक्षा की गई, अतः अभियोजन उपहितियों के लिए स्पष्टीकरण प्रदान करने हेतु बाध्य नहीं तथा अभियुक्त को आत्मरक्षा के लाभ का दावा करने की अनुज्ञा नहीं। गोकुल प्रसाद पुत्र जगन्नाथ एवं अन्य इत्यादि बनाम मध्य प्रदेश राज्य इत्यादि 2007 क्री LJ 4634 धारा 102। शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ और बना रहना। शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उसी क्षण प्रारंभ हो जाता है जब अपराध करने के प्रयत्न या धमकी से शरीर के संकट की युक्तियुक्त आशंका पैदा होती है, चाहे वह अपराध किया न गया हो, और वह तब तक बना रहता है जब तक शरीर के संकट की ऐसी आशंका बनी रहती है। टिप्पणियां। जहां संकट की आसन्नता बहुत पहले समाप्त हो गई हो और हमलावर भाग चुके हों परंतु अभियुक्त गोलियां चलाता है तो स्पष्ट है कि अभियुक्त प्रतिरक्षा के अधिकार के अंतर्गत कार्य नहीं कर रहा है। जयदेव बनाम राज्य AIR 1963 SC 340 धारा 103। कब संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक का होता है? संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार धारा 99 में वर्णित निर्बंधनों के अध्यधीन दोषकर्ता के मृत्यु या अन्य अपहान स्वेच्छा कारित करने तक का है। यदि वह अपराध जिसके किए जाने के या किए जाने के प्रयत्न के कारण उस अधिकार के प्रयोग का अवसर आता है, एतस्मिन पश्चात प्रगणित भांतियों में से किसी भी भांति का, अर्थात पृष्ठ संख्या 22, पहला है लूट, दूसरा रात्रौ गृह भेदन, तीसरा अग्नि द्वारा रिष्टि जो किसी ऐसे निर्माण तंबू या जलयान को की गई है जो मानव आवास के रूप में या संपत्ति की अभिरक्षा के स्थान के रूप में उपयोग में लाया जाता है, चौथा है चोरी, रिष्टि या गृह अतिचार जो ऐसी परिस्थितियों में किया गया है जिनसे युक्तियुक्त रूप से यह आशंका कारित हो कि यदि प्राइवेट प्रतिरक्षा के ऐसे अधिकार का प्रयोग न किया गया तो परिणाम मृत्यु का घोर उपहित होगा। राज्य संशोधन। उत्तर प्रदेश धारा 103 में चौथा खंड के बाद निम्नलिखित पांचवा खंड अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात पांचवा है अग्नि या किसी विस्फोटक पदार्थ द्वारा रिष्टि जो बिंदु क है किसी ऐसी संपत्ति को की गई है जो सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण या सरकार के स्थायित्व में नियंत्रित अन्य निगम के प्रयोजन के लिए प्रयुक्त हो या प्रयोग किए जाने के लिए आशायित हो। ख है किसी रेल को जैसा कि भारतीय रेल अधिनियम 1890 की धारा 3 के खंड चौथा अब भारतीय रेल अधिनियम 1989 में परिभाषित किया गया है या रेल भंडार को की गई है जो रेल भंडार जो कि विधि विरुद्ध कब्जा अधिनियम 1955 में परिभाषित है या बिंदु ग है किसी परिवहन यान को की गई है जैसा कि मोटर यान अधिनियम 1939 की धारा 2 के खंड 33 में परिभाषित है। उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29 वर्ष 1970 द्वारा अंतः स्थापित। टिप्पणियां: जबरन कब्जा की गई भूमि पर परिवादी के विरुद्ध यदि वास्तविक स्वामी या कोई अन्य उस भूमि पर जबरन स्वयं कब्जा करने का प्रयत्न करे तो परिवादी को प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्त होगा। राम रतन बनाम राज्य AIR 1977 SC 619 धारा 104। ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न कोई अपहान कारित करने तक का कब होता है? यदि वह अपराध जिसके किए जाने या किए जाने के प्रयत्न से प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग का अवसर आता है, ऐसी चोरी रिष्टि या आपराधिक अतिचार है जो पूर्वगामी अंतिम धारा में प्रगणित भांतियों में से किसी भांत का न हो तो उस अधिकार का विस्तार स्वेच्छा मृत्यु कारित करने तक का नहीं होता, किंतु उसका विस्तार धारा 99 में वर्णित निर्बंधनों के अध्यधीन दोषकर्ता की मृत्यु से भिन्न कोई अपहान स्वेच्छा कारित करने तक का होता है। धारा 105 संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ और बना रहना। संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार तब प्रारंभ होता है जब संपत्ति के संकट की युक्तियुक्त आशंका प्रारंभ होती है। संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार चोरी के विरुद्ध अपराधी के संपत्ति सहित पहुंच से बाहर हो जाने तक अथवा या तो लोक प्राधिकारियों की सहायता अभिप्राप्त कर लेने या संपत्ति प्रत्युद्धृत हो जाने तक बना रहता है। संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार लूट के विरुद्ध तब तक बना रहता है जब तक अपराधी किसी व्यक्ति की मृत्यु या उपहित या सदोष अवरोध कारित करता है या कारित करने का प्रयत्न करता रहता है अथवा जब तक तत्काल मृत्यु का या तत्काल उपहित का या तत्काल वैयक्तिक अवरोध का भय बना रहता है। संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार आपराधिक अतिचार या रिष्टि के विरुद्ध तब तक बना रहता है जब तक अपराधी आपराधिक अतिचार या रिष्टि करता रहता है। संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार रात्रौ गृह भेदन के विरुद्ध तब तक बना रहता है जब तक ऐसे गृह भेदन से आरंभ हुआ गृह अतिचार होता रहता है। टिप्पणियां। अभियुक्त को प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार तब तक बना रहता है जब तक कि परवादी रजिस्ट्री कारित करता रहता है। राजेश कुमार बनाम धर्मवीर 1997, क्रीलाज SC 2242, पृष्ठ संख्या 23, धारा 106। घातक हमले के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जबकि निर्दोष व्यक्ति को अपहान होने की जोखिम है, जिस हमले से मृत्यु की आशंका युक्तियुक्त रूप से कारित होती है, उसके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करने में यदि प्रतिरक्षक ऐसी स्थिति में हो कि निर्दोष व्यक्ति की अपहान की जोखिम के बिना वह उस अधिकार का प्रयोग कार्य साधक रूप से न कर सकता हो, तो उसके प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार वह जोखिम उठाने तक का है। दृष्टांत। क पर एक भीड़ द्वारा आक्रमण किया जाता है जो उसकी हत्या करने का प्रयत्न करती है। वह उस भीड़ पर गोली चलाए बिना प्राइवेट प्रतिरक्षा के अपने अधिकार का प्रयोग कार्य साधक रूप से नहीं कर सकता, और वह भीड़ में मिले हुए छोटे छोटे शिशुओं की अपहान करने की जोखिम उठाए बिना गोली नहीं चला सकता। यदि वह इस प्रकार गोली चलाने से उन शिशुओं में से किसी शिशु को अपहान करे तो कोई अपराध नहीं करता।